प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के प्रभु से प्यार पाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बलिहार जाने के जमाने के
वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिले।
ओम शांति,
ओम शांति।
बाबा के इतने प्रेरणादायी कहानियां हम सुन रहे हैं, जीवन के प्रसंग हम सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रेरणाएं हम ले रहे हैं। बाबा बहुत ही रहम दिल थे, लेकिन साथ साथ संपूर्णतः नष्ट मोहा भी थे। जब भी बच्चे सामने होते थे, बाबा बहुत प्यार करते थे, जैसे आत्मा को छू जाती थी। बाबा का प्यार इतना निस्वार्थ होता था कि सचमुच दिल से बाबा ये चाहते थे कि इस आत्मा का उद्धार हो जाए, आत्मा स्व उन्नति के पथ पर चलना शुरू करे। लेकिन वो आत्मा अगर सामने नहीं है तो बाबा को वो याद नहीं खींचता था, तो वो जैसे नष्ट मोह होते थे। जो सामने हैं उनको अच्छी तरह प्यार करते थे निस्वार्थ रूप से, लेकिन फिर किसी को मिस करना हो या किसी के याद में जैसे तड़प रहे हो, ऐसी बात तो होती नहीं थी। लेकिन बाबा तो प्यार का सागर है, रहम दिल है, तो हर बच्चे को उस रहम दिली से बाबा हर बच्चे को बहुत प्यार करते थे। ऐसा ही एक प्रसंग है, जब ब्रिजेंद्र दादी थे, तो ब्रिजेंद्र दादी के दो बच्चे थे, दो बेटे थे, माना ब्रह्मा बाबा के दो पोते थे। एक जो पोता था वो कराची में ही अपना शरीर छोड़ दिया था, क्योंकि उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, चेचक की बीमारी हो गई थी, तो वहां ही उसका शरीर छोड़ा था। लेकिन जो दूसरा बेटा था, पोता था, तो वो बाबा के साथ ही कराची में रहे, ब्रिजेंद्र दादी के साथ ही फिर यहाँ माउंट आबू आए। जब बेगरी पार्ट आया, नरेंद्र ये नारायण भाई जब वो गए बॉम्बे गए, तो उन्होंने कहा कि इसको भी मैं लेके जाता हूँ, इसको पढ़ाई कराऊंगा बॉम्बे में। उस पोते का नाम था घनश्याम, और उसको बहुत प्यार से सभी घनसी कहते थे, और वो आत्मा बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही धारणा युक्त, बहुत ही बाबा के प्रति अति प्यार था उसको। और बॉम्बे गए, वहां पढ़ाई की, फिर उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करना है, कि बाबा के सेवा में ही मुझे सारा जीवन देना है। ऐसे बॉम्बे में रहते हुए सेवाएं करते थे, फिर ब्रिजेंद्र दादी का बॉम्बे जाना हुआ, वहां सेंटर स्थापित किया, वहां सेंटर में रहने लगे ब्रिजेंद्र दादी। तो हर हफ्ते में एक बार वो सेंटर में आते थे ब्रिजेंद्र दादी से मिलने के लिए, और सेवा भी करते थे, तो बहुत प्यार था। तो एक बार उसको उसको भी चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा था। और फिर उसको जो पता चला कि बाबा बॉम्बे आए हुए हैं, तो उसको कहा, उसने कहा कि मुझे बाबा से ज़रूर मिलना है। और बाबा को पता चला कि बच्चा बहुत याद कर रहा है मुझे, तो बाबा ने कहा चलो मैं चलता हूँ, बच्चा याद करे और मैं ना जाऊँ ये नहीं हो सकता। लेकिन विश्व किशोर भाऊ कहे कि नहीं बाबा, वहाँ उस हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये फिर बीमारी फैलने वाली बीमारी है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस है, आप नहीं जाइए। लेकिन बाबा एक ना सुने, वे बाबा वहां पहुंचे हॉस्पिटल में, और फिर वैसे हॉस्पिटल के अंदर जब जाना होता था इंजेक्शन दिया जाता था प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन बाबा ने कहा मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। बाबा ऐसे ही गए उस बच्चे के पास, और बाबा ने बाबा को जैसे ही देखा उसने, तो बाकी पहना, बाबा ने उसको भी बाकी पहना, बहुत प्यार किया उस बच्चे को, और टोली भी खिलाई। लेकिन उस भाई को बहुत सारा ज्यादा था, आंख कान मुंह कुछ भी नहीं दिखाई देता था, जैसे इंजेक्शन देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाने के लिए भी जगह नहीं बची थी, तो उतना इतना ज्यादा उनको ये बीमारी हो गई थी। लेकिन बाबा ने कुछ ना देख करके, बाबा ने उसको बहुत प्यार किया और फिर वो बहुत खुशी से नाचने लगा, अंदर बहुत खुशी से संतुष्ट हो गया। फिर बाबा ने दादी को कहा, आप इसकी देखभाल करना अच्छी तरह। फिर बाबा वहां से निकल गए और फिर 2-3 दिन के बाद उस भाई ने शरीर छोड़ा। और वैसे पता था कि क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो फिर 2-4 दिन का ही मोहलत था, तो फिर 2-4 दिन के बाद उस आत्मा ने शरीर छोड़ी। फिर उसके बाद ब्रिजेंद्र दादी उस सभी का उसका अंतिम संस्कार करके, नहा धो करके फिर बाबा के पास जब पहुंचे, तो दादी ने कहा कि बाबा पता नहीं, जब आत्मा शरीर छोड़ी तो फिर जैसे सुख की लहर आई, मुझे दुख का अंश मात्र भी मुझे महसूसता नहीं हुई, लेकिन सुख की लहर आई। तो बाबा ने बहुत गंभीरता से फिर कहा, इस बच्चे ने बहुत पुण्य कमाया था और बहुत अंदर से नाचता था। वो बच्चा भले शारीरिक तकलीफ में था, लेकिन अंदर में वो बहुत संतुष्ट था, बहुत खुशी में था। जब वो खाना नहीं खा सकते थे तो फिर वो ट्रांस में बाबा उसको खींच लेते थे ऊपर, और बाबा उसको वहां वतन में शुभिरस पिलाते थे और पूछते थे, भूख लगी है, भोजन करना है? तो वो भाई कहते हैं कि नहीं, मुझे ना बाबा ने वतन में शुभिरस पिला दी है, मैं एकदम संतुष्ट हूँ, एकदम खुश हूँ। तो उस स्थिति में उस आत्मा ने शरीर छोड़ा कि जो अंतिम इच्छा थी बाबा से मिलने की, बाबा ने वो भी पूर्ण किया, परिस्थितियों को ना देखते हुए उस बच्चे को क्योंकि संतुष्ट किया। इतना रहम दिल हमारा बाबा। लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही नष्ट मोहा, आत्मा जब निकल गई उस शरीर से, फिर बाबा उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे। तो इतना विशाल दिल हमारा हमारे बाबा का था। तो बाबा अपकारियों पर भी उपकार बहुत करते थे। प्यारे बाबा अपकारियों पर भी कैसे उपकार करते थे, ये सब हमने बाबा के चरित्र से सीखा है। एक यज्ञ का पला हुआ भाई था, भागंती हो गया, यज्ञ की ग्लानी करता था। उसको मेरे द्वारा, मतलब दादी रुद्र पुष्प दादी कहते हैं कि मेरे द्वारा बाबा ने एक पत्र लिख करके भेजा मुझे देने के लिए। फिर मैं जाकर के उस पत्र को उस भाई को दिया और उस पत्र में लिखा था कि आ लौट के आ जा मेरे मीत, बच्चे आ जाओ, फिर से आ जाओ, आ जाओ लौट के आ जाओ मेरे मीत, बच्चे आ जाओ। इतने प्यार से बाबा ने वो चिट्ठी लिखी थी उस भाई को। तो मैंने जब उसे पत्र दिया तो उसने पूछा, यदि मैं जाऊं तो क्या बाबा मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से पहले से देखते थे? फिर दादी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरा पत्र देखो तो सही, पत्र में क्या लिखा है। तो उसने दोबारा पत्र पढ़ा और एकदम घायल हो गया, बाबा से मिलने के लिए भाग के चला आया। सामने पांडव भवन, पांडव भवन में भाग के चला आया तो सामने पांडव भवन में बाबा खड़े हैं आंगन में। बाबा ने बाबा को देखते ही स्नेह की दृष्टि बाबा देना शुरू किया उस भाई को, और एकदम बाबा ने बाहें पसारे उस बच्चे को बाकी पहना। और फिर मैं मन ही मन मुग्ध होकर सोचने लगी, वाह बाबा वाह, आप तो कितने उपकारी हो, जिसने इतनी ग्लानि की थी, इतने गाली दी थी, उसे भी अपना दिया। वो भाई भी कहने लगा कि बाबा सचमुच भगवान है, जिसने मुझ जैसे पापी को फिर से अपना लिया। ये था उपकारी अपकारी पर उपकार करने का दृश्य, कि भले कितना भी ग्लानी करे, कितना भी गाली दे, ऐसे बच्चों को भी बाबा ने बाकी पहनाया, बाहे पसारे उन आत्माओं को अपना बनाया। इसीलिए बाबा को प्रजापिता कहते हैं। अतः स्नेह हर बच्चे के प्रति। तो क्या हम भी गाली देने वालों को गले लगा सकते हैं? जो भी हमारी ग्लानी करते हैं उनके प्रति हमारी शुभ भावना हमेशा हम बना के रखें, ताकि उस आत्मा को भी हम उद्धार कर सके, उस आत्मा को भी हम ऊपर उठा सके। तो बाबा की जीवन कहानी तो बहुत विचित्र है, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। एक बार पटना से कुछ नए नए भाई बहनों का ग्रुप बाबा के सामने आया। सुबह की क्लास में सबके साथ में भी बाबा की मुरली, बाबा सबको मुरली सुनाया, सभी को बिठा करके। सो मुरली के अंत में बाप दादा ने कहा कि आज सभा में टोले बांटने के लिए वो बच्चे आवे जो कहे कि हम नष्ट मोहा है। दो बच्चे कहे मैं नष्ट मोहा हूँ, वो आकर के तो सभी को क्लास में टोली बांटे, सबको नष्ट मोहा बच्चे हाथ उठाओ। किसने भी हाथ नहीं उठाया। पुराने बच्चे बाबा के रास को समझ गए थे कि बाबा का ये प्रश्न किन्हीं नए बच्चों के लिए था। तो सभी एकदम से एक दूसरे के तरफ देखने लगे कि आप कौन उठाएगा हाथ, कौन नष्ट मोहा है। बाबा भी मुस्कुराते हुए सभी बच्चों की तरफ देखने लगे। बाबा फिर बोले, क्यों बच्चे, क्या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है इस सभा में जो संपूर्णतः नष्ट मोहा है? फिर बाबा ने आए हुए बच्चों में से एक नए बच्चे को अपने समीप बुलाया और कहा, क्यों बच्चे, तुम टोली नहीं बांट सकते हो, नष्ट मोहा होना बड़ी बात है क्या? क्या तुम्हारा अपनी पत्नी में मोह है? बाबा ने डायरेक्टली पूछ लिया, क्या तुमको अपने पत्नी में मोह है? अगर तुम्हारी स्त्री शरीर छोड़ दे तो क्या तुम रोगे? भाई 2 मिनट खामोशी में रह गया, फिर बोला, नहीं मैं नहीं रोऊंगा बाबा, मेरी पहली पत्नी ने जब शरीर छोड़ा था तो भी मैं नहीं रोया था, अब भी नहीं रोऊंगा। फिर बाबा की दृष्टि उनकी स्त्री पर पड़ी, उनकी धर्म पत्नी पर पड़ी। बाबा ने उनसे भी ये विचित्र प्रश्न पूछा, बच्ची तेरा लौकिक पति अगर शरीर छोड़ दे तो तुम रोएगी? तो उस बहन ने बाबा की ओर देखकर गंभीर रूप से मुस्कुराती रही। बाबा की रूहानी दृष्टि जैसे कि उसमें बल भर रही थी, बाबा से दृष्टि ले रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो जैसे बाबा से बल ले रही थी। उसने धीमे स्वर में बोला, बाबा बेहद का बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, अब क्यों रोना है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, अब अज्ञान वश क्या रोना है? आपने हमें रोने से छुड़ा दिया है। इतना सुन बाबा बोले, अच्छा मेरे महावीर बच्चे, जाओ सभी को टोली बांटो। बाबा ने उन लोगों को बहुत उत्साह भरा उनके अंदर और फिर उनको कहा कि सभी को टोली बांटो। तो अब फिर बाद में जब पटना वापस गए तो अपने सेवा केंद्र पर लौटकर उन दोनों ने क्लास में अपना अनुभव सुनाया कि हमें बाबा से मिलकर संपूर्ण निश्चय हो गया कि ये ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है। किसी मनुष्य की ये पढ़ाई नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के विचित्र अलौकिक प्रश्न कोई मनुष्य पूछ नहीं सकता। कोई साधु महात्मा भी अपने शिष्यों से ऐसा नहीं कह सकता। अगर कोई गुरु किसी शिष्य से ऐसा पूछे तो वो संशय बुद्धि हो जाए। देहधारी गुरु तो हमेशा यही कहते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, संपत्तिवान भव, यही आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये तो कालों का काल है स्वयं भगवान, जिसके लिए जन्म मरण शब्द ही नहीं है, जो अजन्मा है अकाल मूरत है, वही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं और वही बाबा हम सभी को देह भान से ऊपर उठा करके आत्मिक स्थिति में स्थित करा सकते हैं और नष्ट मोह बना करके आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे बाबा जो सामने होते हुए अति प्यार करते थे, लेकिन शक्ति भी इतना भरते कि ताकि जिंदगी के जो भी समस्याएं आए उसको डट करके सामना करने का बल आत्माओं के अंदर वो हो, कि बाबा कभी भी आत्माओं को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कराते थे, ऐसे सहारा हमेशा बाबा के सहारा ऐसा चाहिए ऐसा डिपेंडेंट नहीं कराते थे। हमेशा बाबा आत्माओं को इतना शक्तिशाली बनाया, इतना बल भरा, तो वो बल ना केवल इस जिंदगी के लिए लेकिन अगले आने वाले 21 जन्मों के लिए बाबा ने हम सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाया है। कभी दादी पुष्प शांता आप सभी ने सुनी होगी उनकी ना उनका नाम दादी पुष्प शांता के को बाबा ने परमिशन दिया था कि अपने लौकिक रिश्तेदारों से अपने उनके अपने पर्सनल खर्चों के लिए कपड़े के लिए अपने खर्च के लिए लौकिक परिवार से वो अपना खर्चा ले सकते थे। बाबा ने ये परमिशन दिया था एक पुष्प शांता दादी को और एक निर्मल शांता दादी को। निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा के लौकिक पुत्री थे तो उनको नारायण दादा खर्ची देते थे अपने स्वयं के जो पर्सनल खर्चे होते थे उनके लिए उसके लिए। तो एक बार रमेश भाई जी बाबा से मिल रहे थे तो ब्रह्मा बाबा से रमेश भाई जी ने पूछा कि अपने लौकिक रिश्तेदारों के धन कपड़े आदि का सहयोग एक समर्पित ब्रह्म कुमारी बहन कैसे और कहां तक ले सकती है, क्योंकि जब हम समर्पित हो जाते हैं तो फिर लौकिक रिश्तेदारों से हम कुछ नहीं लेते, बाबा का वो नियम है। लेकिन बाबा ने इन दोनों को परमिशन दिया था। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझसे पूछा, बताओ तुम्हारी मत के मुताबिक अपने लौकिक का धन कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं। तो रमेश भाई जी ने कहा, दादी निर्मल शांता का भाई नारायण तो बाबा का बच्चा है ही, इसीलिए दादी निर्मल शांता अपने लौकिक भाई से मिले धन का उपयोग कर सकते हैं, परंतु दादी पुष्प शांता के रिश्तेदार तो ईश्वरीय परिवार के सदस्य नहीं है, इसीलिए उनसे धन का सहयोग दादी पुष्प शांता नहीं ले सकती। तो ये रमेश भाई जी ने जवाब दिया बाबा को। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझे एक बहुत ही गुह्य रहस्य बताया कि आत्माओं के दृष्टिकोण से आपका जवाब सही है, परंतु बाप तो त्रिकालदर्शी है और त्रिकालदर्शी बाप की श्रीमत के आधार पर ही दोनों बच्चियां लौकिक के धन और कपड़े का उपयोग अपने लिए कर रही हैं। उसमें भी बाबा ने पुष्प शांता बच्ची को खास छूट दी है, क्योंकि आगे चलकर दादी के इस प्रकार के धन के उपयोग के आधार पर उनके लौकिक परिवार के मन में ईश्वरीय सेवा करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी और यज्ञ सेवा में उनके परिवार का बहुत ही सुंदर सहयोग मिलेगा। पुष्प शांता बच्ची के लौकिक के धन के सहयोग से उनके परिवार में ईश्वरीय धारणा बढ़े, इसीलिए त्रिकालदर्शी बाप ने पुष्प शांता बच्ची को धन से धारणा बढ़ाने का प्रयोग करने की छुट्टी दी थी। धन से धारणा बढ़ाने का प्रयोग करने की छुट्टी दी थी। ये प्रयोग करने की छुट्टी बाप ही दे सकता है, आप बच्चे नहीं दे सकते, क्योंकि आप बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं हो। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के इस निर्देश ने आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण पाठ बजाया कि आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए उनकी बेटी के ससुराल, जो पुष्प शांता दादी के बेटी के ससुराल, वो है वाटुमल परिवार, वाटुमल परिवार द्वारा सहयोग दिया गया और आज ये ग्लोबल हॉस्पिटल एक वट वृक्ष की तरह अनेक आत्माओं की सेवा कर रहा है और इसका कारोबार आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार दादी पुष्प शांता द्वारा धन से परिवार की धारणाएं कैसे बढ़ सकती है सीखने को मिला। तो बाबा का जो श्रीमत है बहुत निराला है, एक के लिए जो श्रीमत देते हैं बाबा वैसे ही श्रीमत दूसरों को नहीं देते हैं, हर एक के लिए बाबा का श्रीमत अलग अलग है, अपना जो वातावरण है, अपना जिंदगी है, उसके आधार से बाबा अलग अलग लोगों को अलग अलग डायरेक्शंस देते थे। एक बार एक भी प्रसंग आप सभी ने सुना होगा, ब्रिजमोहन भाई और रमेश भाई जी का ये था कि वो दोनों मधुबन में थे और बाबा से जाकर के मिले और जब दो चार दिन रहे फिर उसके बाद जाने का समय आया, तो जाने उसके पहले कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था बाबा से, कुछ श्रीमत चाहिए था, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे और बाबा से पूछेंगे बाबा क्या जवाब देंगे। तो पहले ब्रिजमोहन भाई जी गए बाबा के पास और ब्रिजमोहन भाई जी ने पूछा, बाबा मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, क्योंकि ब्रिजमोहन भाई एक किसी कंपनी में नौकरी करते थे, किसी के अंडर नौकरी करते थे, तो कहा कि बाबा को, बाबा जब मेरा ऑफिसर, मेरा बॉस अगर चाय ऑफर करता है तो मुझे कभी कभी पीना पड़ता है, तो क्या मैं पी सकता हूँ? तो बाबा ने एक मिनट सोचा कि क्योंकि हर चीज बाबा को पूछते थे, तो बाबा को पूछा चाय मैं पी सकता हूँ बाहर का? तो बाबा ने सोचा और बाबा ने कहा कि बच्चे आप पी सकते हो, उसको दृष्टि दो, दृष्टि दे करके आप पी लो, कोई बात नहीं। फिर वो खुशी खुशी बाहर आए और फिर रमेश भाई जी से बात किया कि बाबा ने ऐसे ऐसे कहा, कि रमेश भाई जी ने भी सोचा कि बाबा शायद मुझे भी छुट्टी दे देंगे चाय पीने की। तो फिर वो गए अंदर और फिर बाबा को कहा कि बाबा मुझे भी वही प्रॉब्लम है, कोई ना कोई क्लाइंट्स आते हैं मेरे ऑफिस में, क्योंकि वो भी सीए थे, दोनों सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और लेकिन रमेश भाई जी का अपना बिजनेस था, किसी के अंडर वो काम नहीं करते थे, वही बॉस थे, तो क्लाइंट्स कोई आते हैं उनको मुझे चाय ऑफर करना पड़ता है और वो अकेले नहीं पिएंगे, उनके साथ साथ मुझे भी पीना पड़ता है, फिर ऐसे क्या करूं? तो फिर बाबा एक मिनट मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम मैं नहीं पी सकते हो, चाय नहीं पी सकते हो। तो फिर रमेश भाई जी को आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे बोला बाबा ने, तो फिर वो बाहर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए, बाहर गए, फिर दोनों ब्रिजमोहन भाई रमेश भाई दोनों साथ आए कि फिर बाबा को पूछा, बाबा ऐसे क्यों कहा आपने? ब्रिजमोहन भाई को कहा कि आप पी सकते हो और रमेश भाई जी को कहा आप नहीं पी सकते हो, ऐसा क्यों बोला बाबा? तो बाबा ने उसको फिर क्लैरिफिकेशन दिया कि ब्रिजमोहन बच्चा जो है वो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो इसीलिए कि वो नौकरी का सवाल है, तो इसीलिए बाबा ये श्रीमत देते, बाबा ये छुट्टी देते हैं कि भले दृष्टि दे करके बाबा की याद में वो चाय पी लो, लेकिन रमेश बच्चा वो खुद मालिक है, वो जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं आपकी चाय पीने के लिए नहीं आते हैं, कारोबार करने के लिए आते हैं, अगर चाय नहीं भी पिया तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो काम कराने के लिए आते हैं वहां, तो इसलिए आप नहीं पियो तो भी चलता है। तो मना हर चीज जानी जानन हार, वो बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ, ये बच्चा ऐसा कर सकता है, ये बच्चा ऐसा, तो पूरा श्रीमद त्रिकालदर्शी होकर के आगे पीछे का सोच करके बाबा हमेशा ये राय देते थे, वो श्रीमत देते थे। तो ऐसे यज्ञ में बहुत सारे महारथी आए और बाबा के बच्चे बने, बहुत सेवाएं आगे बढ़ता रहा। फिर एक और बड़ा जो विघ्न या फिर ऐसे घटना घटी यज्ञ में, किसने कभी सोचा ही नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एक घटना घटी 1965 में। मम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गया और फिर जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है शरीर, बहुत बीमारी फैल गई है, तो अभी चंद दिनों की मेहमान है मम्मा। तो डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दी थी। जब मम्मा के बारे में शिव बाबा को भी पूछा गया, संदेश में संदेशी जाकर के पूछा, तो अब उस स्थूल शरीर में माँ का पाठ शीघ्र ही पूरा होने वाला है, ऐसा संदेश शिव बाबा ने भी दे दिया था। बाबा ने ये भी कह दिया कि भले ही ये बात माँ को बता ही दे दीजिए, क्योंकि माँ की स्थिति इतनी ऊंच है कि इस बात को सुनकर के भी उनकी स्थिति में रंच भी के अंतर नहीं आएगा। मम्मा की जो स्थिति थी बहुत ही ऊंची थी, तो इसलिए बाबा ने कहा कि भले ये संदेश दे दीजिए कि मम्मा ज्यादा दिन अभी शरीर में नहीं रहने वाले हैं। हुआ भी ऐसा। माँ को किसी प्रकार का भय नहीं था, उनके मन में कोई आशा तृष्णा तो थी नहीं, और वे योग द्वारा संपूर्णता की दहलीज पर पहुंच चुकी थी और हर हाल में वो संतुष्ट थी, बहुत खुश थे। अब मुंबई से प्रभु प्रेरणा एवं डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार मातेश्वरी जी को मधुबन में लाया गया। माँ मधुबन में जिस कमरे में निवास करते थे उस कमरे में एक स्पीकर लगाया गया था, जिसके द्वारा वो नित्य प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो शिव बाबा की मुरली चलती थी वो सुनते थे। एक दिन भी मातेश्वरी मुरली नहीं मिस किया। तो ऐसे धारणा मूर्त दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि भले बीमार थे लेकिन मुरली कभी वो मिस नहीं करते थे, और कभी भी 2 बजे उठना वो कभी मिस नहीं किया। प्रकाशमणि दादी हमेशा कहते, जिस दिन से मम्मा यज्ञ में आई तब से लेकर के जब तक पूर्ण शरीर ने छोड़ा तब तक हर दिन 2 बजे हर रोज उठते थे। डॉक्टर लोग जिसे कहते थे ये बहुत ही असहाय, बहुत ही असहनीय कष्ट है, तो उसे वो शांति और खुशी से सहन करते थे। मम्मा व्याधि शरीर को अपने शिकंजे में ले लिया था और मातेश्वरी जी साक्षी अवस्था में स्थित थी, जिससे ये स्पष्ट था कि वे विदेही अथवा अशरीरी स्थिति में थी। व्याधि का शरीर पर काबू होते हुए भी अपने मन पर मातेश्वरी जी का पूर्णतः अधिकार था। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने यह संदेश दे दिया था कि 15 दिनों में मातेश्वरी जी कर्म भोग से मुक्त होने वाली है, परंतु ब्रह्मा बाबा वो जो बात है वो उनके चेहरे पर भी आने नहीं दिया, किसी भी बच्चे को ये बताया नहीं कि मम्मा की ये स्थिति है। सभी बच्चे यही सोचते थे कि मम्मा ठीक हो जाएंगी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। ये हमेशा ऐसा सोचते थे कि मम्मा आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। दिन बृहस्पतिवार था, प्रकाशमणि दादी मुंबई में थे और अमृत वेला जब योग करते थे तो कर रहे थे तो उनको एक दृश्य दिखा कि मम्मा बहुत तकलीफ में हैं और मम्मा जैसे उड़ करके जा रहे हैं, ऐसे उनको दिखाई दिया। ये देखकर उनको बहुत चिंता हुई और उन्होंने फोन लगाया मधुबन में, और फिर विश्व किशोर भाऊ ने फोन उठाया और कहा कि वैसे तो मम्मा कह रही है कि मैं ठीक हूं, लेकिन लगता है कि बीमारी बहुत फैल गया है, तो आप जब आएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर ले आना। तो ऐसे बोला था क्योंकि बहुत तकलीफ थी मम्मा को, छाती में बहुत दर्द होता था, जैसे श्वास लेने के लिए भी बहुत तकलीफ होती थी, तो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कहा था। उस और उस दि उससे एक दिन पहले सायंकाल को बाबा भी मातेश्वरी जी को काफी देर योग दृष्टि देते रहते थे, और बाबा बार बार मम्मा के कमरे में जा रहे थे और घड़ी घड़ी फिर संतरी दादी को भी भेजते थे कि मम्मा के कमरे में जाकर के देख करके आओ मम्मा कैसे हैं। बाबा भी हर रोज मैंने घड़ी घड़ी वहां जाते थे, और कई संदेशियों ने को भी ये संदेश मिल गया था कि मम्मा अभी लास्ट दिनों में है अभी करके। फिर बृहस्पतिवार को मातेश्वरी जी वत्सों को हमेशा मिलते थे, उन्हें ठोली दिया करते थे, और आज भी मम्मा के कमरे के सामने सभी बाबा के बच्चे लाइन से खड़े हो गए बाबा से मम्मा से ठोली लेने के लिए। तो आज के दिन फिर मम्मा अपने हाथों से अंगूर की टोली, बाबा मम्मा को पकड़ाते थे और मम्मा सभी बच्चों को अंगूर खिलाया, क्योंकि वो समय अंगूर का सीजन था, तो मधुबन में अंगूर के गुच्छे उगे थे, तो फिर मधुबन के अंगूर मम्मा ने अपने हाथों से सभी बच्चों को दिया। ये बहुत ही निराला दृश्य था, क्योंकि हमेशा ब्रह्मा बाबा टोली खिलाते थे, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा बाबा अपने हाथों से मम्मा के हाथ में दे रहे हैं और मम्मा सभी बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए सभी बच्चों को दिया। और उस दिन मधुबन में एक पार्टी भी आया हुआ था, बहुत बड़ा ग्रुप था, तो सभी को देते देते काफी समय हो गया। एक तो आप सोच सकते हैं इतना दर्द हो रहा है और एक एक को हाथ उठा करके ऐसे देना मुस्कुराते हुए, तो बहुत तकलीफ हो रही थी अंदर, लेकिन चेहरे पर वो तकलीफ किसी को भी दिखाई नहीं दिया, और भी सभी को लग रहा था कि मम्मा ठीक हो जाएंगे। मम्मा के चेहरे पर ऐसे रौनक थी रूहानियत का, सभी को ऐसा लगता था कि मम्मा ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसी दिन दोपहर को जब सभी ने भोजन कर लिया था, सभी विश्राम करने जा रहे थे, तब मातेश्वरी जी को ऐसा महसूस होने लगा अभी अंतिम विदा लेने का समय आ पहुंचा है। तो मातेश्वरी जी में कुछ इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होते देखकर तुरंत ही बाबा को सूचित किया गया था। फिर बाबा तुरंत मम्मा के पास आए, बहुत योग युक्त होकर के मम्मा को दृष्टि देते रहे। आखिर फिर मम्मा ने धीरे धीरे अपने देह का त्याग किया और देह मुक्त हो गए। इस प्रकार विश्व के इतिहास में 24 जून 1965 को एक अत्यंत महान आत्मा का जगदम्बा सरस्वती नाम के कर्तव्य साकार रूप में समाप्त हो गया। सभी यज्ञ वत्सों को तुरंत पता चल गया, फिर और सभी सेवा केंद्र में बाबा फोन लगा करके बताने लगे कि ये ऐसा हुआ। लेकिन साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने ये भी कहा सभी को कि कोई भी रोए नहीं, क्योंकि ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मम्मा ने शरीर छोड़ा, और सभी के दिल में, बच्चों के दिल में अटूट प्यार था मम्मा के प्रति, सभी रोने जैसे हो गए थे, तो किसी को भी रोना नहीं था। इसलिए बाबा ने बहुत युक्ति से बताया सबको, कोई भी बच्चा रोएगा नहीं, क्योंकि अगर योग युक्त होकर के ऐसे शक्तिशाली होकर के अगर योग करेंगे कि शायद शिव बाबा वापस मम्मा को भेज दे, इस शरीर में। तो ये युक्ति रचा करके बाबा ने सभी बच्चों को इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल बनाया, कोई भी रोए नहीं, ऐसे शक्तिशाली योग में सभी को बिठाया। और फिर मम्मा के शरीर को छोटे हॉल में लेके आए, स्त्री हॉल में, वहां सब श्रृंगार किया, सभी लोग वहां आए। और फिर बाद में मम्मा के पार्थिव शरीर को ले जाया गया। फिर तभी भी बाबा ने यही डायरेक्शन दिया, कोई भी ऐसा कोई वत्स, अगर कोई कमजोर दिल वाला, कोई नहीं जाएगा स्मशान घाट मम्मा के अंतिम यात्रा में। तो कोई ऐसा वत्स जो बहुत मजबूत है, आंखों से एक भी आंसू ना गिराए और एकदम पावरफुल होकर के वहां तक जाए, और अंतिम समय भी मम्मा वापस आ सकती है। तो ये एक चाहना सभी को संकल्प दिया था, लास्ट मिनट तक भी मम्मा आ सकती है वापस, इसलिए कोई भी रोए नहीं। तो ऐसे करके बाबा ने सभी को स्ट्रांग बनाया और मम्मा के लास्ट जो विधि थी, अंतिम संस्कार, वो हो गया। फिर बाबा का रोल ही बदल गया। अभी तक तो मम्मा बाबा मिल करके यज्ञ को संभालते थे, फिर अभी बाबा, ब्रह्मा बाबा कहने लगे कि मैं ब्रह्मा शिव बाबा की वन्नी है, कि आपका जो अलौकिक माँ है वो ब्रह्मा है। तो सभी ब्राह्मणों की जो बुद्धि है वो फिर ब्रह्मा के तरफ खींचने लगे, फिर ताकि फिर बच्चों को ये महसूस ना लगे हमारे पास मम्मा नहीं है, माँ नहीं है, वो खालीपन महसूस ना करे। फिर तब से लेकर के ब्रह्मा बाबा पिता का भी रोल निभाया, माँ का भी रोल निभाया, बहुत करुणामयी बन गए, बहुत दयामयी बन गए, और बहुत ही प्यार से यज्ञ को सींचा, संभाला और आगे बढ़ाया। ऐसे थे हमारे अति मीठे, अति प्यारे मम्मा और बाबा। ओम शांति।
राजयोग का योगी बोला, राजयोग का योगी बोला, ईश्वरीय वाणी
सुनो, सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी सुनो, सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी सुनो, सुनो।
तपस्या सेवा मानव हित
सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी सुनो सुनो
Yeah.